जुल्म का खात्मा, यानी पहली ही आयत में आप जुल्म की बातें भी जान लेंगे, क्योंकि अल्लाह को क्या नहीं पसंद, वो जुल्म नहीं पसंद। और जुल्म की बदतरीन किस्म शिर्क है, क्योंकि इन शिर्क अला जुल्मुन अजीम, शिर्क जुल्मे अजीम है। तो इस बारे में आपको शिर्क के रद से लेकर एक दूसरा जुल्म, वो क्या है, इनकारे हदीस। दूसरी तीसरी आयत में ही आप देख लेंगे कि अंबिया कराम को ना मानना और अल्लाह को मानना और इस तरह की बातें करना इसी में आएगा। फिर इसी पारे में आपको शरीयत के निफाज से दूरी का जुल्म दिखेगा, हलाल और हराम के मामले में जुल्म दिखेगा, गलूफ की बात है जो जुल्म है, हज़रत ईसा अलैहि सलाम पर जो जुल्म हुआ वो दिखेगा, अंबिया कराम पर जुल्म हुआ कि जो इंसानियत के नफ़े की खातिर लाए गए उन पर जुल्म, फिर हाबील और काबील के वाक़े में काबील का जुल्म दिखेगा कि कैसे उसने अपने भाई को ही कत्ल कर दिया। और हकीकत यह है कि इस पूरे पारे में इस्लाहे मुआशरा का एक पूरा कानूनी एजेंडा है। और अफसोस है कि आज के दौर को देखें तो वो जगह जहां दालतें बिकने लगें, जहां गरीब बेचारे पिसें और अमीर जुर्म करके भी बाहर फिरें और बेगुनाह कैदी बने, वहां सबसे पहले अदल कायम होगा, शरीयत नाफिज होगी, फिर सजाएं लगेंगी। इस बारे में सूरत मायदा आएगी, जहाँ वो आती है थोड़ी सी हम उस पर वहाँ भी बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ बात याद रखिएगा कि इस बारे में सूरत निसा का कुछ हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने जब जुल्म किया तो उसका नतीजा क्या निकला। यानी आप कह सकते हैं कि ये 148 से 176 तक सूरत निसा का हिस्सा है और सूरत मायदा की पहली 82 आयात है। इस पारे की पहली और दूसरी आयत में इस्लाहे मुआशरा और फसाद की रोकथाम के लिए एक अहम असूल बयान हुआ है, और वो क्या, कि अगर कोई शख्स मजलूम हो तो वो जालिम की बुराई बयान कर सकता है, हत्ता कि उसकी गीबत कर सकता है, लेकिन उसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक यह है कि उसका जवाज़ हो, और दूसरी बात है कि जालिम को जुल्म से रोकना या उसको उसकी सज़ा दिलानी है। फिर इसी के बाद आयत नंबर 150 से 152 में हम देखेंगे कि यहूद और नसारा के जुल्म की बात है, कैसे उन्होंने बुरे अकायद कायम किए और अल्लाह के नबी पर ईमान ना लाए, और जो उस दौर के अंदर खराबियां पैदा कर सकते थे आपके रास्ते में उन्होंने पैदा की। फिर इसी तरह इसमें आपको 153 से 161 में हज़रत मूसा के बारे में कुछ चीज़ों का तذکرہ होगा कि जिसको इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते जाएं तो आप देखेंगे कि ये पारा एक खूबसूरत पारा है, इतना इनरिच्ड है। ख़ास तौर पे अगर सूरत मायदा की बात कर दूँ तो सूरत मायदा इसमें जो आ रही है ये आखिरी दौर की सूरतों में से एक सूरत है। तो लिख लीजिए कि मदनी सूरत और आखिरी सूरतों में से एक, और ज़्यादा हिस्सा उसका इसी पारे में है। सूरत मायदा के चार हिस्से हैं। पहला हिस्सा अहकाम का है, अहकाम है जिसमें शिकार के हुक्म, ज़बीहा के अहकाम हैं, तहारत, वुजू, गुसल, फिर इसी तरह चोरी डकैती, इनकी हदूद की बात है कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या फैसले नाफिज किए। फिर इसके बाद बाज़ अहम वाक़यात हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा है, हाबील और काबील, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ रवानगी का किस्सा है, और इसी तरह से इसमें आपको बनी इसराइल की थोड़ी सी तारीख मिलेगी। तीसरा हिस्सा इसके अंदर अहकाम के साथ क्या है, अकायद की इसलाह का। यहूद व नसारा के बाज़ अकायद, मसलन अल्लाह ताला की औलाद की निस्बत करना, दीन में गलूव करना, और इसी तरह मुशरिकीन के फासिद अकायद की इसलाह है, जैसे जानवरों में गैर अल्लाह के नाम का हिस्सा डालना वगैरह। और चौथा हिस्सा इस सूरत का आखरत पर ईमान और क़यामत की हौलनाकियों का है। इंशाल्लाह पारे को शुरू करते हुए हम साथ साथ इन चीज़ों पर गौर करेंगे, लेकिन आज इस पारे को सुनते वक्त आपको एक दुआ ज़रूर करनी है कि अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में ही इस शरीयत को नाफिज होता हुआ दिखा, अपने इस वजूद से लेकर पूरी दुनिया पर। आज भी दुनिया के मुल्कों में से बेहतरीन मुल्क सऊदी अरब है कि जहाँ शरीयत की बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह नाफिज हैं, और इधर का सुकून और इधर की खुशी को आप महसूस कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। अल्लाह का एहसान है, दुनिया के कई मुल्कों में अल्लाह ने जाने का, रहने का, वहाँ काम करने का मौका दिया है। हमारे लिए तो हर जगह सुकून है, ये तो मैं आपको सच कहूँ, क्योंकि काम ही एक है, मिशन ही एक है। हम खाना काबा में भी आ जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ खाना काबा की मोहब्बत, तवाफ़ और वो और ईमान की कुव्वत बढ़ती दिखती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी दुनिया में कहीं जाकर ये नहीं लगा कि यहाँ हमें कोई मुश्किल है, अल्लाह का शुक्र है ये भी, क्योंकि असल चीज़ तो आपका लाइफ स्टाइल है ना, वो कहीं भी कुछ हो जाए। और अगर आप मक्का में रह लें और आपका लाइफ स्टाइल इस्लामिक नहीं है तो आपको यहाँ भी सुकून नहीं होगा। लेकिन एक ओवरऑल जब मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आती दिखती हैं और दूसरी चीज़ों को हम देखते हैं तो फिर एकदम एहसास होता है कि इस मुल्क की बरकतों को जितना समेट सकते हैं समेट लीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते तो आप उसको ज़रूर लूज़ करते हैं। इफ़ यू विल नॉट यूज़ इट यू विल लूज़ इट, ये तो एक इंग्लिश की कहावत भी है ना। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने मुल्कों की इन बरकतों को ले लें। तो आइए ज़रा सब हम सूरत को शुरू करते हैं, सूरत निसा आयत नंबर 148 से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता मगर मज़लूम को इजाज़त है, और अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा, या किसी बुराई से दरगुजर करो, यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी देने वाला है और पूरी कुदरत वाला है। जो लोग अल्लाह ताला के साथ और इसके पैगंबरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल के दरमियान फ़र्क रखें, ये नोट कीजिएगा, और जो लोग कहते हैं कि बास नबियों पर तो हमारा ईमान है और बास पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके दरमियान राह निकालें, यकीन मानो कि सब लोग असली काफिर हैं, और कुफार के लिए हमने एहानत अमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और इसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह ताला इनके पूरे सवाब देगा, और अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दे, बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी, फिर बावजूद इसके कि इनके पास बहुत सारी दलीलें आ पहुँची थी, उन्होंने बछड़े को अपना महबूब बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और दलील इनायत फरमाई, और इनका कॉल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया, और इन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में ज्यादती यानी तजावुज ना करना, और हमने इनसे सख्त कौलो इकरार लिए। ये सजा थी बस अब इनके अहद शिकनी के और अहकाम इलाही के साथ कुफर करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के, और इस सबब से कि यूं कहते हैं कि हमारे दिलों पर खिलाफ है, हालांकि दरअसल इनके कुफर की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, इसलिए ये इस कदर कलील ही ईमान लाते हैं, और इनके कुफर के बायस और मरियम पर भी बहुत बड़ा बुहतान बांधने के बायस और यूं कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए वही सूरत बना दी गई। यकीन जानो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं, इन्हें इसका कोई यकीन नहीं सिवाय अंदाजे यानी तखमीनी बातों पर अमल करने के, इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और बेशक अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। अहले किताब में से एक भी ऐसा ना बचेगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले इन पर ईमान ना ला चुके, और क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थीं वो हमने इन पर हराम कर दी इनके जुल्म के बायस और अल्लाह ताला की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बायस, और लोगों का माल नाहक मार खाने के बायस, और इनमें जो कुफार हैं हमने इनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। यहाँ तक आयात का एक बड़ा मजमूआ हमने पढ़ा जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या थी, ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सुई इल्ला मन ज़ुलिम। ये है इस पारे का अमूद। बस लोगों ने इस आयत को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब किया कि एक मौके पर किसी ने उनको गाली दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये मंजर देख रहे थे। अबू उस बकर सिद्दीक उसके जवाब में कुछ ना बोले, लेकिन जू ही उस बात के जवाब में अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सा बात करने के लिए तैयार हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हट गए। तो जब अबू बकर सिद्दीक ने यह मंजर देखा तो उनको तो फिक्र लग गई कि ये क्या हुआ। तो उस पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनको कि आप जब बोले तो फरिश्ता चला गया और शैतान आ गया, और जब आप खामोश थे तो आपको जो शख्स गाली दे रहा था उसके जवाब में फरिश्ता आपके दिफा में उसको गाली दे रहा था। इस जुमले को ज़रा सा जहन में लाइए और पूछिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबाने मुबारक से कुरान सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अना और उनके अंदर अपने आप को छोटा समझना तो आ गया, क्या हमारे अंदर भी आ गया? जब हम अपनी बातों का जवाब खुद दे रहे होते हैं तो हम फरिश्ते को भेज देते हैं। तो ये जो आयत है ना, ला युहिब्बुल्लाह, ये बड़ी अहम आयत है। अल्लाह को पसंद नहीं कि किसी के पोशीदा मामलात को जाहिर किया जाए, और बुरी बात के ऐलान से मुराद उलमा ने गाली देना भी लिया है कि अल्लाह को पसंद नहीं कि किसी को गालियाँ दी जाएँ। गाली देना गुनाह और एक मुसलमान की शान से बईद है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म नहीं करता ना उसे गाली देता है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि मुसलमान को गाली देना फिस्क और इसे कत्ल करना कुफर है। इसी तरह आपने फरमाया, आपस में गाली देने वाले दो आदमी जो कुछ कहें, यानी इसका वबाल इब्तिदा करने वाले पर है जब तक कि मजलूम हद से ना बढ़े। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो ला युहिब्बुल्लाह में अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों में एक चीज़ क्या है कि किसी की बुराइयों को, किसी की कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने आ गई, कभी किसी का कोई राज होता है, कभी किसी के अंदर कोई वीक पॉइंट होता है, उसको बरमला आम करना। अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा जो चीज़ें अल्लाह की नेमत हैं, अल्लाह की रहमत हैं, जिससे इस्लाम को, दीन को और शरीयत को आम करना है, उनको एक दूसरे की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला ऊपर से शुरू होता है हुक्मरान हुक्मरानों की किरदार कुशी के लिए। सोशल मीडिया का किरदार तो आपने शुरू से ही देखा है। अखबारों में भी बाज़ दफ़ा ब्रेकिंग न्यूज़ और वो इवनिंग स्पेशल्स में चटखारेदार खबरें ज़रूर वो देते थे ताकि उनका अखबार बिकता रहे। फिर इसी तरह हेडलाइंस दी जाती हैं। फिर इसके साथ साथ टेलीविज़न की खबरें सनसनीखेजी फैला दी जानी। लेकिन अब जब से पब्लिक के हाथों में ये चीज़ें आ गईं, उसका नुकसान क्या हुआ कि लोग बिल्कुल बग़ैर सोचे समझे किसी भी बात को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। चाहे वो अदाकार की बात है, गुलकार की बात है, वो किसी म्यूजिशियन की बात है या किसी दीनदार की बात है। याद रखिए, आज इस मौके पे तौबा कीजिए। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन कंतरा के मुकाम पर आप रोके गए हों। किसी बात का पता चल गया, अगर वो सच भी है तो भी चुप रहिए, और जबकि आपको पता ही नहीं वो सच है भी कि नहीं। सुना तुमने, पता सुने, ये हुआ ये, और कॉन्स्पिरेसीज होती है ना, घरेलू सियासत, फलां की बेटी क्यों बैठी हुई है, देखा तुमने वो क्या थी, वो तुम्हें पता है उनके घर के और है उनका रिश्ता। भाई आपको क्या लगे, मिन हुस्नुल इस्लामी तर्कुहु मा ला यानी। इंसान के और मुसलमान के इस्लाम का हुसन क्या है कि हर बेमानी चीज से अपने आप को पाक रखे। दूसरी बात यह कि पिछले पारे के आखिर में चूंकि मुनाफिकीन का तस्करा था, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकि असफली मिनन नार, तो इस बारे में उलमा कहते हैं कि उसके फौरन साथ ला युहिब्बुल्लाहुल जहर करके अल्लाह ताला ने ये पैगाम दे दिया कि मुसलमानों के ऊपर जब मुनाफिकीन के कुछ हालात खुलें, और खुलेंगे मदीना में रहते हुए जब इंट्रैक्शन होगा तो बहुत सारी बातें खुलेंगी, तो उस वक़्त सच्चे मोमिनों को इस बात की इजाज़त नहीं कि उसका बरमला ऐलान करें। वो कहते हैं जितना बर्तन होता है ना उतना ही डलता है। छोटे से बर्तन में किसी की कोई बात टिकती नहीं है। बड़ा बर्तन कीजिए, दिल का ज़र्फ़ बड़ा कीजिए, लोगों के लिए दुआ कीजिए, लोगों के लिए इसलाह कीजिए, लेकिन कभी भी गंदगी को ना फैलाएं। आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात सोचिए कि जो कभी उसने किसी की बुरी बात की हो, वो कैसे, बुराई क्या है, कचरा, ट्रैश, सब पर और इसी तरह हर मुल्क में इसका मुख्तलिफ नाम लिया जाता है। हम अपनी ट्रैश कैन को ऊपर से ढक्कन क्यों लगाते हैं, ट्रैश बैग गिरा लगा कर क्यों फेंकते हैं, पकड़ के किचन से फेंक के आते हैं। कभी कोई करे कि सारे अपने ट्रैश को लेके पूरे घर में फैलाए, ड्राइंग रूम में थोड़ा सा ट्रैश खोल दे, और वो ट्रैश जो 2-3 दिन से किचन की बास्केट में था, कैसा लगेगा घर? ताफुन है, बिल्कुल ऐसा ही ताफुन आता है। तो किसी शख्स के अंदर कोई दीनी या दुनियावी ऐप मालूम हो तो इसको शोहरत देना अल्लाह को नापसंद है। नसीहत का हक हर एक को है, मगर नसीहत या तो किसी का नाम लिए बगैर अमूमी अंदाज में की जा सकती है, या उस बंदे से मिलकर तन्हाई में उसको दी जाती है। अल्लाह सुबहान तआला सुबह शाम लोगों के जरायम नजरअंदाज करता है, बंदों को भी अपने अंदर यही अखलाक पैदा करना है। हाँ, इल्ला मन जुलिम कहकर बता दिया कि एक शख्स को हक है और वो कौन है, मजलूम, उसके लिए रुख्सत है। वो जालिम के जुल्म को लोगों के सामने बयान करे, हुक्मरान तक ले जाए, उस पर केस करे, मुकदमा करे, किसी ने पैसा मार दिया, किसी का हक मार दिया, किसी की जान ले ली, किसी की इज्जत ले ली, वो भी वहीं जाके बात करेगा जहां उसका सलूशन है। इसके अलावा दूसरों से बातें करना और हुकूमत तक नहीं पहुंचे, फायदा क्या होगा? कॉन्स्पिरेसीज होंगी और क्या होगा। इसी तरह घर में रहते हुए किसी के साथ आपका इख्तलाफ राय हो सकता है। अब आप अपनी दोस्तों से अपनी सासों की बुराइयां करती फिरें, अपने शौहर को बुरा बना दें अपनी दोस्तों की नज़र में, फायदा क्या होगा? हाँ, आपको लगता है मेरे शौहर का ये प्रॉब्लम है और मुझे अब अकेले सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है, आप उसके पेरेंट्स से बात कर लीजिए, किसी एक साहिब हाल से, या कोई ऐसा दीनदार जो बड़ा ही हिकमत वाला समझदार हो, और वो फिर उसको सुनकर आपको मशवरा दे, जिसको काउंसलिंग कह सकते हैं, जिसको आप एक दूसरे से दुख सुख करना कह सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए, क़यामत के दिन ये बहुत बड़ी जवाबदेही का जरिया बनेगी। आप अपने ऊपर लेकर इसको सोचिए, अबू बकर सिद्दीक को गाली पड़े और वो खामोश रहे, तो आइए यहाँ जरा अखलाक नबवी भी देखते हैं। घर में आकर गाली देने वालों के लिए भी माफी। मैं आप सबसे एक ऐसी इमेजिनरी बात करती हूँ, आपके घर में कोई आए, दरवाजा आप खोलें और आप कहें कि बड़ी को मुहज्जब सिस्टर लग रही हैं, अच्छी ही लग रही हैं, आप उनको ड्राइंग रूम में ले जाएं, बिठाइए, वो भी बैठ गई, आप भी बैठ गई, और फिर वो आपका नाम लेकर कहे, मैं अपना नाम ले लेती हूँ, इफ्फत तुम मर जाओ, तुम्हारे बच्चे मर जाएं, तो बताइए मेरा क्या रद्द अमल होगा? आप अपना नाम लिख कर कहिए, मेरा नाम मत लिखे, अपना लिखे। क्या हमारे बस में होता हम उसका मुंह ना नोच लें? क्या हम उससे ज्यादा सख्त लहजे में उससे बात ना करें? क्या हम उसकी बात को बर्दाश्त कर सकेंगे? और कुछ नहीं, हम तो खड़े खड़े उसको घर से धक्के दे के निकाल दें, और कुछ नहीं तो 911 को कॉल कर लेंगे अगर अमेरिका में होंगे, नहीं तो पुलिस कॉल कर लेंगे जिस मुल्क में भी हैं, और उसे ऐसी खरी खरी सुनाएंगे कि ऐसी कोई फजूल बात मुझसे ना करना। अब आप ये सारी बातें जो एक ह्यूमन रिएक्शन की है, इसको जहन में रखिए। अबू बकर का वाकया आपके सामने है, गालियां देने वाले शख्स के साथ मुस्कुराना ये आम लोग नहीं कर सकते, और गाली बोल के भी दी जाती है, गाली लिख के भी दी जाती है, गाली सुनाई भी जाती है, गाली पढ़ाई भी जाती है, हर तरह से। इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में आपको पता है सेंसिटिव होता है। मान लीजिए आपके पाँव पे कोई पाँव रख दे, आपकी जान निकल जाती है, लेकिन अखलाक मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप हद दर्जा हलीम और अफ्वो दरगुजर वाले थे, और बुराई का जवाब बुराई से कभी नहीं देते थे। और वो वाकया जो सही बुखारी में है वो आपको सुनाना चाहूंगी। एक मर्तबा यहूद की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आपके घर आई, उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, अस्सलामु अलैकुम। साम का लफ्ज अरबी में मौत के लिए आता है, माजअल्लाह आप पर मौत हो। इन अल्फाज के साथ उन्होंने अपने खुब से बातें, यानी आपके दिल में जो आपके लिए ग्रज और गुस्सा था ना, उसका इजहार किया। बयक वक्त आपको मौत की बददुआ भी दी, और एक इस्लामी शार अस्सलाम वालेकुम के हरूफ में हेरा फेरी करके इसका मजाक भी उड़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी ये बेकार बात सुनी, ना इनको बुरा भला कहा और ना इनको अपने घर से फौरन निकलने का हुक्म दिया, बल्कि सिर्फ ये अल्फाज कहे, वालेकुम, सेम फॉर यू, वालेकुम कहकर कह दिया, जो तुमने मुझे कहा वो तुम्हारे लिए। हज़रत आयशा सिद्दीका भी वहाँ मौजूद थी और यहूद की ये बातें सुन रही थी। अल्लाह के नबी की ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सकी, ये तौहीन रिसालत थी उनकी, मुंह पे आके बात कर रहे थे। कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम वलअनकुमुल्लाहु वगदिब अलैकुम। जज्बाती होती हैं औरतें तो वैसे भी जरा ज्यादा ही बोलती हैं। तुम पर मौत के साथ साथ अल्लाह की लानत और गजब भी हो। रसूलुल्लाह ने जब हजरत आयशा के ये अल्फाज सुने तो आपने फरमा, आयशा ठहर जाओ, तुम्हें नरमी करनी चाहिए, सख्ती और गैर मुनासिब कलेमात से बचना चाहिए। अच्छा, हजरत आयशा समझी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे नहीं है कि वो अस्सलाम वालेकुम की जगह सलाम वालेकुम कह रहे हैं। कहने लगी, अवलम तस्मऊ मा कालू, अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है? आपने इरशाद फरमाया, अवलम तस्मई मा कुल्तु, क्या तुमने नहीं सुना मैंने जवाब में क्या कहा? यानी मैंने उनकी भी सुन ली तो तुमने मेरी सुनी कि नहीं? क्या रदत्तु अलैहिम फयुस्तजाबु ली फीहिम वला युस्तजाबु लहुम फी। मैंने इन्हें वो जो जवाब दिया वो दुआ तो कबूल हो जाएगी लेकिन उन्होंने जो मेरे बारे में कहा वो कबूल नहीं होगा। ये सही बुखारी में से आप खुद भी पढ़ सकते हैं, 6401 है। अब आपको इस वाक्य से एक तो यहूद के दिल में अल्लाह के नबी की दुश्मनी और हसद मालूम हुआ, दूसरा अल्लाह के नबी का सब्र और हिकमत। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे कि एक यहूदी आपकी मजलिस में दाखिल हुआ, इसने आकर सलाम कहा। सहाबा कराम ने इसका जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने पूछा, हल तदरूना मा काला हाजा, क्या तुम जानते हो इसने क्या कहा है? कालू सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, या सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, कि उसने आपको सलाम कहा। आपने इरशाद फरमाया, ना सलाम अलैकुम, उसने कहा तुम्हें मौत आए। सहाबा कराम ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल आपने इसको क्या जवाब दिया? आपने इरशाद फरमाया, मैंने सिर्फ यही कहा, बस सलाम अलैकुम, तुम पर भी मौत आए। तो क्या पता चला कि अलैकुम कहकर अगले पे डाल दीजिए, सेम एज यू। और हदीस में आता है जो किसी को गाली देता है वो गाली पलट के जाती है उस बंदे पे जिसको वो देता है, अगर वो उस काबिल नहीं होता यानी उसको नहीं थी वो देनी तो कहने वाले पे पलट जाती है। तो हर इंसान अपने एक एक लफ्ज का खुद जिम्मेदार है, जितनी मर्जी गालियां बददुआएं सलवाते और जो मर्जी इसको फैला दीजिए, आप याद रखिए कयामत के दिन से पहले इसका एक एक चीज का अल्लाह हिसाब करेगा। अपने लिए जुमले लिख लीजिए, आप बच्चों को गाली नहीं दे सकते, आप मुलाजमों को नहीं दे सकते, आप फैमिली में किसी को नहीं दे सकते और किसी को भी नहीं दे सकते। किसी ने हवा को गाली दी एक मौके पर अल्लाह के नबी की जिंदगी में, अल्लाह ताला ने उस पर भी मना कर दिया। और फिर अल्लाह के नबी के पावर थी, पुलिस बुला ले, असहाबे सुफा को एक कॉल करते, सब ने आके इनकी दुर्गत बना देनी थी। हम तो एग्रेशन दिखाना चाहते हैं ना, गुस्सा जोश, हमारे दिल में तो मोहब्बत ही बड़ी है अल्लाह के नबी की, लेकिन तरीका तो देखें जरा हमारा क्या है। तो याद रखिएगा, अल्लाह के नबी ने अपने घर में आकर गाली देने वालों को भी माफ कर दिया, अफ़ो दरगुज़र इससे ज्यादा किसको होगा। ये था वो अखलाक जिससे दुश्मनों के दिलों में आपने मोहब्बत पैदा की। और ये सारी हदीसें जो मैंने आपको सुनाई है, इनमें पहली तो बुखारी की थी, अगली मुस्नद अहमद की है और मुस्नद बज़ार की भी है। तो आज हम नियत करते हैं कि हम हमेशा अपने आप को तहम्मुल में रखेंगे। हम अपने प्यारे नबी के उसवे से यही सीख रहे हैं कि अपनी ज़ात को छोटा कर दो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को बड़ा कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें खुद बहुत, अगर तुम हक पे होगे तो बड़ा कर देगा, और अगर तुम हक पे नहीं हो तो फिर दुनिया तुम्हें 100 तरफ से अच्छा कहने लगे, तुम अच्छे नहीं हो। दूसरा, इन आयात में, आयत 161 में बात हुई थी सूद की, तो इस पे एक हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, सूद के खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, इसकी गवाही देने वाले पर और इसका हिसाब लिखने वाले पर लानत। इब्ने माजा 2277। तो अल्लाह सुबहान तआला हमें इससे बचाए। अल्लामा इकबाल ने एक बहुत ही जुमानी शेर कहा, जाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मफाजात। यानी चंद लोग सूद के माल पे पल पल के मोटी मोटी भैंसे बन जाते हैं और बाकियों का खून चूस लेते हैं। अल्लाह ताला इस सूद के निज़ाम से भी बचा दे। इस बारे में इस पे भी बात होगी, आगे देखिए 162। लेकिन इनमें जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं और ईमान वाले हैं, इस पर ईमान रखते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले और ज़कात को अदा करने वाले हैं, और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हम बहुत बड़े अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही लोगों में शामिल कर ले कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि हम इनको जन्नतों में दाखिल करेंगे। تو آئیے ذرا ان آیات پہ تدبر اور عمل کی چند باتیں لیتے ہیں. آیات پہ عمل کیا ہے کہ خوش اخلاقی سے دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. کہتے ہیں کہ گڑ نہ دو, گڑ جیسی بات تو کر لو. زبان شیری مل گیری, دوسروں کو اچھی نصیحت کریں اور شر سے خبردار کریں اچھے طریقے سے. دوسروں کی زیادتی معاف کر دیں اور اپنے لیے اصلاح کی دعا کریں. اسی طرح رہنمائی کے چند نقطے, دوسروں کے ساتھ بہترین اخلاق اور معاملات رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. پاک دامن خواتین پر تہمت لگانا ساتھ ہلاک کرنے والے بڑے گناہوں میں سے ہیں. نماز اور زکوٰۃ کو آسان طریقے سے ادا کرنا اور غور و فکر کی چند باتیں, مظلوم کو اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو کھلے عام بیان کرنے کی اجازت ہے لیکن زیادتی کی اجازت اس کو بھی نہیں. مظلوم میں لوگوں نے مہمان کو بھی رکھا کہ کوئی کسی کے گھر مہمان گیا اور اگر اس کو کسی نے بالکل ہی نہیں کھانا پانی پوچھا اور باہر اس دور میں کھانے کی باتیں بھی نہیں تھیں تو وہ اس کا تذکرہ کر دے. لیکن آج کے دور میں دیکھیے, کسی کے گھر جائیں اور خاص طور پہ سسرالی بن کر جائیں اور داماد بن کر جائیں تو کیا طرز عمل ہے؟ دس دس چیزیں کھلاتے, گھر والا پریشان ہو کہ جو مرضی کر لے, اس کے باوجود باہر آ کے کہیں یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا. تو ہمیشہ انسانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے نہ کہ ناخوشی کا. پھر اسی طرح سے ذکر و اذکار کرنا ہے, اچھی اور نرم بات کرنا اور معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے. اس پہ ایک لیکچر ہے, یہی نام ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے, لا یحب اللہ اور یحبو. تو اس میں ہم نے وہ ساری حدیثیں جمع کی اور آیات جمع کی جس میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا تذکرہ. بعض اوقات رویوں کی وجہ سے حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں, اور خواہش نفس کی وجہ سے اندھی تقلید نہیں کرنی. یعنی کئی جگہ صرف ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے, ہم دین سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ نفس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور اس حصے میں خاص طور پہ پھر جو بات ہے وہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹانے کی. کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث ہے نا, ہاں ہاں قرآن کی بات ہوگی تو ہم مانیں گے. حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی طرح سے ہے جیسے قرآن ہے. اسی زبان سے لوگوں نے قرآن سنا, اسی زبان سے حدیث سنی. اس لیے کبھی بھی یہ کفر نہ کرے کوئی کہ قرآن کی بات کو تو ہم مان بھی لیں گے, فرض بھی سمجھ لیں گے, اور حدیث کی بات کو ہم نہیں سمجھیں گے. کیونکہ جتنا زیادہ قرآن اور حدیث کے اندر فرق کریں گے اتنا بھٹکیں گے. اس پہ ایک جملہ میرے منہ سے اکثر نکلتا ہے, اگر آپ لکھنا چاہیں لکھ لیجئے, اللہ اور رسول کی ذات میں فرق ہے, بات ایک ہی ہے. بس اسی سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات سلجھ جاتے ہیں. تو ہمیں تو ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ان باتوں کو لے کر آگے چلنا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 163 سے, اب اللہ تعالیٰ کچھ پچھلی قوموں کی کہانیاں ہماری طرف پیش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, ان نا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام کی طرف کی, اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر, اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی, اور آپ سے پہلے کہ بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے, اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا, ہم نے انہیں رسول بنایا, خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے, تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے. آپ نے نوٹ کیا انبیاء کرام کے تذکروں میں کس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا ذکر کیا؟ تو پہلے تو اس آیت کو آپ سراج و منیرہ کے طور پہ نوٹ کیجئے, ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین, کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی نبوت کو ہمارے سامنے پیش کیا. اور دوسری بات ہے کہ آپ کا مقام کیا تھا, خوشخبری دینا اور ڈرانا, یعنی اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں اور برے کام کرنے والوں کو روک لینا, اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی بات بھی ہے. اور اسی کے ساتھ پھر آیت نمبر 166 جس میں فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے, اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. और अल्लाह ताला बतौर गवाह खुद काफी है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह हरगिज हरगिज न बख्शेगा और ना इन्हें कोई राह दिखाएगा सिवाय जहन्नम की राह के, जिसमें वो हमेशा पड़े रहेंगे। और ये अल्लाह पर बिल्कुल आसान है, यानी ये ना सोचो कि शायद अल्लाह ताला के लिए ये मुश्किल होगा। अब अगली आयत का नंबर नोट कर लीजिए, 170। उस्वतुन हसना के नाते से, या यूहन्ना सुकद जाकुमुर रसूलु बिल हक मिर रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे अपने लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज़ जो आसमान और ज़मीन में है, और अल्लाह दाना और हिकमत वाला है। इस आयत पे दिल जमा लीजिए, प्यारे नबी को अल्लाह ने जो कुछ दिया वो पूरा हक था। किसी भी चीज़ के बारे में शक पैदा कर दिया जाए तो सही चीज़ भी गलत लगती है। खाते खाते कोई एकदम आपको कह दे कि इसमें मक्खी गिरी थी और किसी ने निकाल के फेंक दी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अगला लुकमा खाएंगे, चाहे ये बात झूठी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो शरीयत आई, ये हक है। आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे लोग इस शरीयत पे शक करते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों का शक दूर कर दे। फिर इसके बाद, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, यहाँ से अब आप वो मजमून शुरू हो रहा है सूरत का, जिसमें आप देखेंगे कि कौमें कैसे बिगड़ी। गलू अम्बिया कराम की शान को बढ़ाना या घटाना दोनों ही ठीक नहीं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, खाने में नमक 1 या 2 चम्मच होता है, बिल्कुल नहीं डालेंगे तो भी खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा, और अगर 4, 6, 7, 8 चम्मच डाल देंगे तो भी नहीं खिलाया जाएगा। अल्लाह ने अम्बिया कराम का एक खास मुकाम रखा है, हमारे प्यारे नबी का भी एक खास मुकाम था। जब आप उसको उस पर रखेंगे तो दीन का हुसन भी लेंगे, शरीयत को भी लेंगे, लेकिन उसको बिल्कुल ना मानना, इनकारी कर देना सिर्फ इसलिए कि हम नहीं मानते, ये भी गलत है। और मोहब्बत के ही नाम पे, नबी से इश्क के नाम पे, और न जाने क्या क्या नामों पे आपका रुतबा अल्लाह ताला के रुतबे के बराबर या कई जगह उससे भी बढ़ा दिया जाए, इसको गलू कहते हैं। आइए सुनिए इस शऊर के साथ। अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से न गुजर जाओ और अल्लाह पर सिवाय हक के कुछ न कहो। मसीह साहिब ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया गया था, और इनके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो, और ये ना कहो कि अल्लाह 3 है, इससे बास आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, और वो इससे पाक है कि इसकी औलाद हो, और इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। अल्लाह ताला काफी है काम बनाने वाला। क्या पता चला, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम कहकर माजी के लोगों का गलूफ तो बता दिया, या जो आपको क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का सबूत मिलता है ना, 3 तसलीस, ईसा, मरियम और जिब्राइल, और इसी तरह कई अकायद है, ये एक दिन में नहीं हुआ। हज़रत ईसा की ज़िंदगी में दीन एक ही था, और वही था जिसको आप ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में पढ़ते हैं। लेकिन लम्हे लम्हे के साथ भटक गए। आज अगर हम मुसलमान यहूद और नसारा को देखकर भटक रहे हैं ना, तो नसारा किसको देखकर भटके? ईरानियों को। उनके पास कई ऐसे मिथ थे कि जिसकी बुनियाद पे बुत परस्ती भी थी, मुजस्मा परस्ती भी थी। हम इन आयात की जब डिटेल से तफसीर करते हैं तो वो सारी उनकी हिस्ट्री उनको सुनाई जाती है, ताकि हमें तो पता चले कि हम तो खुद उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो खुद रास्ता भूले हुए हैं। तो आज मुसलमानों का गलुभ क्या है? असरे हाजिर के मुसलमानों का गलुभ जहालत से भरा हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से गलुभ, काबे की अजमतों का मुनकर नहीं हूँ मगर मीठे नबी का रोज़ा, कुछ इस तरह की बातें। जब भी कभी कोई नात पढ़े तो 10 दफ़ा सोचे फिर पढ़े। नात पढ़ना बहुत प्यारी चीज़ है, अल्लाह के नबी के दौर में भी पढ़ी जाती थी, लेकिन नात के अशार क्या हैं उसको देख लीजिए। फिर इस तरह आइमा कराम के हवाले से गलूफ क्या है? किसी एक इमाम की बात को लेकर कुरान हदीस की सही बात को पीछे डाल देते हैं और उसके इमाम को आगे ले आते हैं। सहाबा कराम के हवाले से गलूफ क्या है कि कुछ लोग तो सहाबा कराम को बुरा भला भी कह रहे होते हैं, आपस में उनकी छोटी छोटी बातों को बड़ा करके पेश करते हैं। इसी तरह बाद लोग सूफिया कराम के हवाले से गलूफ क्या है कि उनकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, इस्लाम की तालीमात से मेल नहीं खाती, उसको लेके सूफीज़म के नाम पे क्या कुछ करते हैं। हालांकि जब ये सूफीज़म कभी शुरू हुआ होगा तब बिल्कुल डिफरेंट था। तो क्या पता चला कि गलूफ का इलाज कुरान और शरीयत है। सही इल्म देते जाइए, लोग बुरी चीज़ें छोड़ते जाएंगे। गलुव करना शिर्क है, दीन में कमी बेशी करने को गलुव कहते हैं, जो दीन का नक्शा बदल दे वो गलुव है। आप खाना बनाकर हटें और घर में कोई और खातून जिसको आपसे ज़रा सा बुगस हो कि इसका खाना क्यों मज़े का है, चुपके से 2 चम्मच नमक के डाल के और निकल आए बाहर। और जब सारे घर वाले के ये क्या हुआ भाभी खाना कैसा बनाया, तो आपको कैसा लगेगा? आपके घर के अंदर आकर आपकी चीज़ों को कोई इधर से उधर उधर से इधर कर दे, कैसा लगेगा? हम तो 19 से 20 नहीं बर्दाश्त करते हैं। दर्जी कपड़े में 19 से 20 कर दे, सर पे मार के आती हैं खवातीन के, ये क्या सी दिया है? तो क्या अल्लाह का दीन ही रह गया जिसपे आप सारी एक्सरसाइज करें और सारी अपनी मशकें करें? तो इससे बचने की ज़रूरत है। रिवायत है बहुत प्यारी बुखारी की, 3445, हज़रत उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे मरतबे से ज़्यादा ना बढ़ाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने उनके रुतबे से ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा हूँ, इसलिए सिर्फ यही कहा करो कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। हमें भी यही कहना है इंशाल्लाह। फिर आगे 172 देखिए, लई यस्तन की फल मसीह हो यकून अब्दुल्ला, मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं, मतलब क्या है कि एम्बेरसमेंट नहीं, वो इसी चीज़ के ऊपर है। क्या मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं या तकब्बुर और इनकार है ही नहीं, ना हो सकता है, और ना मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को अपनी तरफ इकट्ठा जमा करेगा। आज हम किसी भी जगह जाकर दीन की कोई बात करें तो हम एम्बेरसमेंट फील करते हैं। ये आयत आपसे मुझसे तकाजा करती है कि जब अल्लाह के दीन का कोई तकाजा सामने आ जाए तो फिर हमें उसमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैंने कई मुसलमानों को देखा नमाज नहीं पढ़ते किसी के सामने, शादी हालों में मगरिब की नमाजें फौत करके खाने पीने खाते रहते हैं, क्या करें अब सबके सामने हम नमाज पढ़ें? एयरपोर्ट्स पे नहीं पढ़ते। अल्लाह ने इस आयत में बता दिया कि अच्छे लोगों को बिल्कुल एम्बेरसमेंट नहीं होती, तो वी आर नॉट एम्बेरस्ड मुस्लिम, वी शुड बी प्राउड टू बी मुस्लिम। अपने इस्लाम पे फख्र कीजिए, अपने बच्चों को बताइए जहाँ नमाज का वक्त हो वहाँ का आप नमाज पढ़िए, अपने इस्लामिक हाल खुलिए को कभी भी किसी जगह लोगों की पसंद के लिए हल्का ना कीजिए। आगे ईमान वालों की बात है, फामल्लसीना मनु वामिलुस्सालिहात, बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने शाइस्ता अमाल किए, इनको इनका पूरा पूरा सवाब इनायत फरमाएगा और अपने फजल से इन्हें और भी ज्यादा देगा, और जिन लोगों ने आर और सरकशी और इनकार किया इन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायती और दोस्त और मददगार ना पाएंगे। क्या पता चला? असल बात यह है कि अच्छे काम करो, और वो कौन से काम होंगे? जिन कामों को कर कर आप और मैं अपने आप को अल्लाह की नज़रों में अच्छा बनाएं। देखिए दूसरों से बेनियाज हो जाइए। हमारा आज एक बहुत बड़ा मसला पता क्या है, बहुत ही बड़ा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग 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 हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा लोग जीते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद जिए, ये कहा करें अल्लाह क्या कहेगा, रसूल क्या कहेंगे।